ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनश्लाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण शुभप्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 9वें अध्याय और 22वें श्लोक पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं के बारे में अति गुह्य ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसे सारी गुह्यों का राजा कहलाता है। भगवान के बारे में जो जो सीक्रेट है, गुह्य बातें हैं, तो गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम। गुह्य यानी सीक्रेट, गुह्यतर यानी काफी ज्यादा सीक्रेट, लेकिन गुह्यतम यानी कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट। तो सर्वप्रथम श्लोक में कहते हैं कि इदं तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षशे शुभात्। हे अर्जुन, मैं तुझे अति गुह्य ज्ञान कहता हूं, क्योंकि तू मेरा ईर्ष्यालु नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, और उसकी प्रस्तावना करते कह रहे हैं कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। ये सारी विद्याओं गुह्य विद्याओं का राजा है, द किंग ऑफ नॉलेज जिसे कहते हैं। और इतना पवित्र है कि दूसरों के साथ उसकी सरिखाई नहीं की जाती। दूसरी बात ये बताते हैं, प्रत्यक्ष आपको परिचय कराने वाला है, यानी कि किसी भी कोई वैज्ञानिक प्रयोग हमें प्रत्यक्ष परिचय कराता है तो उसे हम सत्य स्वीकारते हैं। तो ये भगवान के बारे में जो अति गुह्य ज्ञान है वो प्रत्यक्ष परिचय कराने वाला है, इसीलिए प्रत्यक्ष अवगमन करना। अवगमन करना यानी कि प्रयोग जो यदि किसी के मार्गदर्शन में करते हैं तो प्रयोग पद्धति से करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मनमाने ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। भक्ति का प्रयोग जो है मनमाने ढंग से नहीं होता, किसी भगवान के तरफ पहुंची हुई व्यक्ति या जिस परंपरा से ये पद्धति स्वीकारी है जो पहुंचने की गारंटी देती है, उन सबके माध्यम से स्वीकार करनी चाहिए। तो धर्मम सुसुखम कर तुम, ये पद्धति का आचरण वास्तविक धर्म है और करने में बहुत सुख प्रदान करता है। और कर्तुम अव्ययम, इस भक्ति के पथ पर हमने जितना प्राप्त किया है वो हमेशा हमारी विरासत बनती है, उसमें कोई क्षय नहीं होता बल्कि वृद्धि ही होती है। तो भगवान का ऐसा अति गुह्य ज्ञान के बारे में जब भगवान के स्वमुख से ही उसकी सराहना हमें मिलती है तो इस पर हमें काफी विचार करना चाहिए। मनुष्य चिंताशील है लेकिन सारी चिंता भगवान पर छोड़ने वाले कितनी है। हम चिंता का बोझा अपने सर पर लेकर घूमते फिरते हैं, दुनियादारी में इतने फंसे हैं, लेकिन भगवान में मानते हैं, लेकिन भक्ति का ये राजमार्ग जो है हमें भगवान पर कितना भरोसा कराता है। हम अपने जीवन में जरा थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि हमें भगवान पर कितना भरोसा है। भगवान पर यदि भरोसा है तो भगवान के शब्दों पर भरोसा होना चाहिए, भगवान जो गारंटी देते हैं उस पर भरोसा होना चाहिए। तो आज का श्लोक ये कुछ बता रहा है। भगवान कहते हैं 22वें श्लोक में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त लोग मुझे या मेरी पूजा करके सिर्फ मेरे अकेले के प्रत्ये ही वो भक्ति भाव दर्शाते हैं और मेरे ये दिव्य स्वरूप पर ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं उनका सारा जीवन व्यवहार का बोझा अपने माथे पर चला लेता हूं और इनके पास जो कुछ भक्ति के विषय में उन्होंने प्राप्त किया है उसको मैं पूरे पूरे ढंग से रक्षा करता हूं। तात्पर्य में हम समझे तो यदि कृष्ण भावना अमृत के बिना एक पल भी जीना जिसके लिए मुश्किल हो जाता है, यानी कि जो 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के बारे में उसका सतत चिंतन अनन्य भाव से रहता है, अन्य यानी कि दूसरी कोई भी चीज, दूसरी कोई भी स्वरूप, दूसरे कोई भी व्यक्तित्व पर चिंतन नहीं, सिर्फ अनन्यास चिंतयनो माम, माम यानी मेरे, भगवान स्वयं अपने ये विशिष्ट स्वरूप पर जो चिंतन करने की बात करते हैं तो इनके लिए एक पल भी मेरे चिंतन बिना जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे मेरी भक्ति में, और भक्ति के तो 9 प्रकार हैं, यानी कि भगवान के बारे में सुनना, बोलना, स्मरण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम पूजनम साख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार से भगवान का सतत जिसको स्मरण रहे ऐसी प्रवृत्ति में जुड़ते रहता है अपने आप को। तो उनके लिए भगवान सब कुछ अपने आप को हवाले करते हैं। बार कह चुके हैं अर्जुन को, सततम कीर्तयन्तो माम यतंतश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करें। यतंतश्च दृढ़व्रता, कैसे उसके प्रयत्न दृढ़ व्रत वाले होते हैं। दृढ़ यानी कि बिल्कुल ना समझ रहे ना दूसरे स्वरूप पर ध्यान दे, तो माम कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, वो अपने बारे में कह रहे हैं। कोई भी अलग व्यक्तित्व, चाहे देवताओं का हो या भगवान के अवतारों का कोई हो, कभी ने कोई ऐसा दावा नहीं किया है कि मेरे नाम का चिंतन करो, मेरे स्वरूप का चिंतन करो। कहीं भी देखोगे कोई भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। जब भगवान का मूल स्वरूप या पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण चरित्र ठोस से हमें कह सकते हैं, तो ऐसा भगवान का विशिष्ट स्वरूप है जिसका चिंतन करने के लिए हमें वो स्वयं आग्रह कर रहे हैं। ये सारी प्रवृत्तियां जो भक्ति की बताई गई हैं, वो हमेशा सबके लिए मंगलकारी होती है। इसमें भगवान की जो ये दिव्य शक्तियां का अनुभव होता है, और ये सारे दिव्य अनुभव एक भक्त को संपूर्ण रीति से आत्म साक्षात्कार के लिए कामयाब होता है। जबकि एक भक्त का, एक भक्त की हमेशा यही इच्छा रहती है कि भगवान का सानिध्य वो प्राप्त करे, भगवान का प्रेम प्राप्त करे, जिससे सारी उसकी जो भौतिक इच्छाएं तो कब से दब जाएगी और उसकी इच्छा के परिपूर्णता भगवत प्रेम में प्राप्त होती। भगवान के प्रेम की एक बूंद हमारी सारी भौतिक आसक्तियों से बढ़कर अमृतमय होती है। हम इस भौतिक दुनिया में जहां जाओ तो उसमें आनंद के लिए पूरे पूरे ढंग से उसका हम उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन आनंद की एक बूंद भी नहीं मिलती। ये भौतिक संसार को कहा है कि तातले वारी बिंदु सुत मित रमणी समाज है। भौतिक संसार एक बड़ा रेगिस्तान है जो धकधकता ताप जैसा है, उसमें एक पानी की बिंदु के लिए सब तरसते हैं, लेकिन एक पानी की बिंदु इसने धकधकते रेगिस्तान में हमें क्या संतोष देगी। तो ये संसार रूपी ही रेगिस्तान में सुतमित रमणी समाज है, एक बेटा भी संतोष नहीं देख सकता है, कोई मित्र भी ऐसा संतोष नहीं देगा, कोई पत्नी भी नहीं दे सकेगी, और सारा समाज भी नहीं दे पाएगा। तो भगवत प्रेम की लालसा हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन भगवान का प्रेम अनन्याश्चिंतयन्तो माम, भगवान स्वयं कितनी बार कहते हैं भगवत गीता में, केवल अन्य भक्ति द्वारा ही हे अर्जुन तुम मुझे यथार्थ रूप में जान सकोगे, इतना ही नहीं तुम मुझे देख भी सकोगे, इतना ही नहीं तुम मेरी पास मेरी लीला में प्रवेश भी कर सकोगे। भक्त्या तु अनन्यया शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। तो ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोल रही है, न तो उसकी बरोबरी में दूसरे व्यक्तित्व इनके ही स्वरूपों इनकी तुलना में आ सकते हैं। भगवान अपने अवतार में अपनी अंश कला के रूप में वो विस्तार करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार
व्यासदेव ये कहते एते चांग सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी वाकुलं लोकम मृदयंती युगे युगे। इंद्र के अरि दुश्मन यानी कि जब 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 देवताओं पर आपत्ति आ जाती है तो भगवान उनके सहाय के लिए अवतारे धारण करते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। देवता लोग भगवान के साधु चरित्र वाले जीव है जो सारी भौतिक सृष्टि का संचालन भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। ये जीव कोई मामूली जीव नहीं है लेकिन जीव तत्व है वही सही बात है। सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब इनकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति करना भगवान स्वयं होते हैं। उत्पत्ति का विस्तार ब्रह्मा जी कर सकते हैं, संहार शिव जी कर सकते हैं लेकिन पालन तो भगवान को स्वयं अपने मथे पर उठाना पड़ता है। लेकिन ये पालन के लिए भी वो अपना विस्तार तीन तीन विष्णु तत्व द्वारा करते हैं, एक विष्णु नहीं। विष्णु त्रीणी रूपाणी कारणोदक्षाई विष्णु जिसको हम महाविष्णु कहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा के स्वरूप में है लेकिन बीच में ब्रह्मा जी को पैदा करने वाले गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। तो हरेक स्थल पर अपनी अपनी स्थिति भौतिक सृष्टि में इनका संचालन के लिए भगवान इनका विस्तार करते हैं तीन तीन विष्णु रूप में। जब कृष्ण भगवान ने अवतार धारण किया तो देवकी के पेट में से नहीं किया है, सर्वप्रथम विष्णु के रूप में वो खड़े हो गए और वो भी क्षीरोदक्षाय विष्णु, दूसरे नंबर के नहीं पहले नंबर के भी नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि वहां भागवत में ये बताते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक निवासी है उन्होंने वसुदेव के हृदय में स्थान लिया। वसुदेव ने भगवान के ये रूप का स्थानांतर देवकी के हृदय में किया जो दीक्षा के द्वारा किया। उसको गर्भवती बनाने के लिए संयोग नहीं करना पड़ा है उसको। जब देवताओं ने ये देखा कि ओ देवकी कितनी उज्जवल बन गई है, अवश्य भगवान ने उसके पेट में स्थान लिया होगा, ऐसी धारणा करके देवताओं वसुदेव और देवकी की प्रार्थना करते हैं और कारागार में सभी आकर मिलते हैं। प्रार्थना करने के बाद वो सभी चले जाते हैं। भगवान को उतरने के लिए 9 महीना 10 दिन की राह भी नहीं देखनी पड़ी है, न तो कोई बच्चे के रोने की आवाज आई है। तो भागवत दिव्यता का चरित्र बताता है। हमारी मान्यता या हमें समझाने वाले अन्य पुराणों जिसमें तीन गुणों यानी कि अपनी भौतिक समझ के अनुसार जो सत्व रज और तमोगुण के अनुसार हमें सिखाते हैं तो उसमें कोई दिव्यता नहीं है। दिव्यता तो अध्यात्म के ऊपर चढ़ती है यानी कि भौतिक तीन गुणों से हमें छूटने की आवश्यकता होती है जिसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति इस जन्म में हम पा सकते हैं जब भौतिक अवस्था को हम स्वीकार न करके भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए उनकी अनन्य भक्ति में दिव्यता धारण करने से आती है। श्रीमद् भागवत में भगवान के ये धर्म का पालन को भागवत धर्म कहते हैं जो सुनने मात्र से शुरू हो जाता है। 5 श्लोकों में ये सारा भागवत धर्म सर्वप्रथम स्कंध में बताया गया है कि श्रृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतश्च ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान के कथा गान सुनते क्या होता है, हृदय में जो जो अमंगलकारी है, जो भौतिक तीनों गुणों, तो वो तुरंत सफाई कर देती है। भगवान की कथा अपने आप में इतनी आध्यात्मिक स्तर पर होती है जिसके द्वारा हमारे सारे भौतिक जो गुण है, रजोगुण तमोगुण इत्यादि नष्ट होते। कैसे? तो यदि हम नित्य कथा श्रवण का उपयोग करें तो। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, प्रायेषु इमीडिएटली तुरंत ही जो ये अभद्र की सफाई होती थी, जो हम नित्य हमेशा नियम बनाकर अपने जीवन में ये कथा श्रवण करे तो। ऐसे नहीं कि एक सप्ताह के लिए श्रवण करना है, नहीं नहीं, नित्यम भागवत सेवाया का। 7 दिनों में तो परीक्षित महाराज की छुट्टी हो गई, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हम तो धुंधकारी जैसे हैं जो पाप योनि में पड़े हैं, इसके लिए 7 दिनों के सप्ताह मनावे तो पता नहीं कि धुंधकारी का तो छुटकारा हो गया पद्म पुराण के अनुसार, हमारा कब होगा। न तो धुंधकारी जैसा हम श्रवण करने के लिए तैयार हैं, न कुछ नहीं। तो नष्ट प्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नित्य श्रवण कीर्तन में यदि हम रहें, हफ्ते में एक बार करना, इसमें कितना फायदा होगा। नित्यम कहा है तो भगवान की निष्ठापूर्वक वाली भक्ति अपने हृदय में स्थापित हो जाएगी। बाद में चमत्कार देखो, निष्ठा का तो सवाल यही भी है। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतन करने के लिए हमारे में कितनी श्रद्धा है, हम भगवान में क्या सोचते हैं, कितना भरोसा है इन पर जो हमारे सारे जीवन का वो बोझा उठा ले। तो कहने का मतलब है कि यदि नित्य भगवत सेवा में कथा श्रवण कीर्तन इत्यादि जो 9 प्रकार की भक्ति है, तो ये करते हुए तदा रजस तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण की सारी प्रवृत्तियां हमारी होती है तो वो तो चली जानी चाहिए। तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश्चय, कामनाएं, हर एक प्रकार की कामना, खाने की कामना, पीने की कामना, शरीर सुख की कामना, भौतिक चीजों की कामना, ये सभी तमोगुण के आधार पर बनी है, रजोगुण और तमोगुण। तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश्चय, काम और लोभ रजोगुण और तमोगुण के आधार पर बने। चेत एतर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति, हमारी चेतना इन जो बेस मोड है हमारे रजोगुण और तमोगुण उसको दूर करती है, और भगवान का श्रवण कीर्तन हम सत्व गुण में प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं। अभी शायद आप ही जांच पड़ताल करो कि हम प्रसन्नता पूर्वक करते हैं या कुछ और दहशत भी होती है अंदर। जैसे गुण वैसा सुनना भी होता है, वैसा समझना भी होता है। तो प्रसन्न मन से भगवत भक्ति में प्रयोग करते जाओ। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। प्रसन्न मन से भगवान की भक्ति में यानी कि सत्व गुण का आधार लेना पड़ता है। वो आधार लेकर हम जब भक्ति करते हैं तब भगवान के बारे में जो परम सत्य है, तत्व यानी परम सत्य, जो जानकर हमारी मुक्ति तुरंत हो जाती है। ये परम सत्य क्या है भगवान भगवत गीता में बताते हैं, न किसी अवतार ने बताया है, न किसी धर्मशास्त्र में किसी के व्यक्ति या चरित्र के बारे में जो भगवान कहलाते उसके बारे में बताया। स्वयं कृष्ण ने और कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवत में मिलेगा, अन्य कहीं नहीं मिलेगा। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते। अभी मुक्ति की अवस्था में वास्तविक भक्ति जब चालू रहती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तब क्या हालत होती है उसका चमत्कार भी बताते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिंद्यन्ति सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनिश्वरे। उसके हृदय में जो ग्रंथियां यानी कि मिसकंसेप्शंस अवधारणाएं बहुत भरी है। मैं तो ये मानता हूं, मैं तो वो मानता हूं, अरे सब मानो तो देव नहीं तो पत्थर करके भी बैठ जाता हूं। मन चंगा तो कथरोट में गंगा, ये सब प्रकार की मान्यता कि ग्रंथियां टूटती। विद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय में ऐसी ग्रंथि बहुत सालों से पड़ी है, अरे बहुत जीवन से पड़ी है। 84 लाख योनि में क्या क्या कंसेप्शन हमने नहीं बनाए होंगे। छिंद्यन्ति सर्व संशया, हमारे सारे डाउट दे आर स्लैश टू पीसेस। क्षीयन्ते चास्य कर्म, हमारे सारे कर्म बीज पैदा नहीं करते, वो सब जल के खाक हो जाते हैं। यानी कि दूसरा भाव की हमें कोई लेने की कोई तैयारी की आवश्यकता भी नहीं है। भाव बंधन कटते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनिश्चय। इसी दशा में हम अपने आप को और अपने हृदय में बैठे हुए, अपनी बगल में बैठे हुए भगवान ईश्वर जो परम नियंता है, इन दोनों का दर्शन कर सकते हैं। अन्यथा भगवान के दर्शन की लालसा मूर्खता है। जो सत्वगुण में नहीं रहना चाहता है वो आगे बढ़ेगा भी कैसे। हमारा जीवन का सारा व्यवहार तामसिक भाव से ज्यादा प्रवृत्तमान है। कलयुग तमस की खान है। कलौ दोष निधे राजन, सारा कलयुग दोष की निधि है। अस्ति एको महद्गुण, इसमें एक ही महान गुण है और वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम प्रजेत। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन परम मुक्ति देता है, परम व्रजेत और भगवत धाम में भी पहुंचाता है। तो इन चीजों में भगवान का मंतव्य और भगवान के विशुद्ध भक्त जिनकी कथा श्रीमद् भागवत में, इनके द्वारा परिपूर्ति होती है। तो भगवान कहते कि ऐसे अनन्य मन से मेरी भक्ति करने के लिए ही जो तैयार हैं, उनका सारा बोझ मैं उठा लेता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वास्तविक देखें तो यही सच्चा योग, योग यानी कि भगवान के साथ जुड़ाव करने की जो पद्धति है, वो उसकी सारी जो सीक्रेट हम यहां बता देते हैं। भगवान की कृपा से ऐसा भक्त कभी कलयुग देखने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेगा। क्षेम का मतलब है भगवान का बहुत कृपा द्वारा उसका जो संरक्षण होता है उसे क्षेम कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसे योग यानी कि जुड़ावा अपने साथ कर देते हैं कि ये पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत बन जाता है और भगवान उसका पूरे ढंग से ये बद्ध भौतिक जीवन में फिर से गिरने से बचा लेते हैं, अपने धाम में वापस ले लेते हैं। भगवान पक्षपात बहुत करते हैं अपने भक्तों पर, न तो उसको उन तो समदर्शी भी कहलाते हैं। भगवद गीता में ही भगवान अन्य जगह पर अर्जुन को उसकी दहशत यानी उसका डाउट हटाने के लिए कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, हर एक जीव के प्रत्यय में संभाव वाला हूं, समभाव, न द्वेष्टि न प्रियोसि में, कोई मेरा द्वेषी नहीं है और कोई मुझे प्रिय भी नहीं। लेकिन ये भजंती तो माम भक्तिया, जो मेरा भक्त है मुझे प्रीतिपूर्वक भजन मेरा भजन करता है, तो ते अभी शुच्याप्य हम तेषु, उसके लिए मैं भी उसका भजन करता हूं। भगवान भक्त का भजन करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम्, भगवान को भजने की आवश्यकता क्या है, लेकिन भगवान व्यक्ति है, परम व्यक्ति है और प्रेम का संबंध में आदान प्रदान होता है, प्रेम एक पक्षी थोड़ा होता है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो हमारी शरणागति भगवान के प्रति कितनी मात्रा में है, कैसी क्वालिटी की है, ये सब देखते हैं। ऐसा नहीं कि क्या हम हाथ ऊंचा करके आ जाए, भगवान अब तो मैं जैसा हूं वैसा आपका ही हूं, यानी कि हम छूट गए। अरे छूटे नहीं, फंसोगे। भगवान पवित्रम इदम पूर्णम, इतने पवित्र हैं कि हमारी ये रजोगुणी और तामसिक भावनाओं को से तो कितने दूर होते हैं, इनको हम मनमनाए मानते नहीं। कम से कम अपनी पवित्रता बढ़ाने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए कि भगवान की पवित्रता हम समझें, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, इसलिए गुणवत्ता में तो एक ही है। कम से कम क्वालिटेटिव वननेस तो हमें पुनर्स्थापित करनी पड़ेगी, क्वांटिटेटिव वननेस तो है ही नहीं। हम इतने छोटे हैं कि हमारी कोई गणना नहीं है, भगवान इतने बड़े हैं कि उनकी भी कोई गणना नहीं कर सकता। हमने कुछ पैदा नहीं किया, पैदा तो भगवान करते हैं। कोई कहता है कि देखो मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके इतनी संपत्ति पैदा कर ली, भाई शक्ति कहां से लाए, उधार ली है किसकी, तो कि भगवान की, तो उधारी पहले चुका बाद में दावा कर, जन्मो जन्मांतर उधारी कर्जा करके बैठा है उसका क्या है, कभी कर्जेदार अधिकारी बनता है, बिल्कुल नहीं। कोई कहते हैं कि ओ देखो हम भी बच्चे पैदा करते हैं, भाई बच्चे कौन पैदा करता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लाइफ तो लाइफ से ही आती है। वो भगवान, भगवान से, भगवान के अंश हम उनसे विलग हुए हैं, तो पैदा करने वाला भगवान है। लेकिन ये हमें कोई निमित्त बनाता है, यानी कि हमारे शरीर को निमित्त बनाता है, शरीर की रचना द्वारा भगवान अंदर जीव डारते हैं। सर्वर योनिषु कौन्तेय मूर्तयन्ति संभवन्ति जा ताशाम महद्योनिर अहम बीज प्रदपिता। हरेक के शरीर में, हरेक अलग अलग प्राणियों के शरीर में भगवान अपने आप को बीजप्रद पिता कहते हैं, तो हम झूठा दावा क्यों करें कि हम पिता हैं, हम माता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहना पड़ता है। हम हमारा झूठा दावा तो यहां अपना शरीर चला जाएगा, उसके साथ चला जाएगा, हम वैसे खाली फक्कड़ बाबी जैसे रहेंगे। अपने साथ क्या जाता है? सोचा भगवान का नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए बोला हरे कृष्णा
हरे
कृष्णा
हरे
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे
राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे।
आप सभी का धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो जरा बोले। है कोई प्रश्न? भगवत प्राप्ति का साधन आज के श्लोकों में बताया गया है। ऐसा नहीं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, बहुत स्पष्ट है। हमें समझदारी थोड़ी बनानी चाहिए, अपने जीवन में ये चीज उतारनी चाहिए। हमें भौतिक गुणों कहीं नहीं ले जाते, भौतिक गुणों से ऊपर उठना ही मनुष्य का धर्म है। जब सनातन धर्म की बातें करते हैं तो आत्मा सनातन है, शरीर सनातन नहीं, न देश सनातन है। ये तो सारी भौतिक उपाधियां, लेकिन आत्मा को कोई भगवान के अलावा का दूसरा कोई संबंध नहीं होता, न तो उपाधि होती है। तो जब आत्मा आध्यात्मिक स्तर पे होती है, भौतिक स्तर पे होती ही नहीं, लेकिन हम उसको दबाए हैं। हमारी इच्छाएं ऐसे विपरीत हैं भगवान की ईर्ष्या से। भगवान से हमने ईर्ष्या की है तब हमारी ये हालत होती है। जब भगवान याद आते हैं तो उनको पाने के लिए भी प्रयत्न करते हैं। सब जगह अपने हिंदू भाई मंदिर बना लेते हैं, लेकिन हम अपनी ये भौतिक गुणों के पीछे चिपके हैं, इनको हटाने का कोई प्रयत्न नहीं करते। तब मान्यता हमें कहां तक पहुंचाती है? जब तक हमारे गुण नष्ट नहीं होते। ये भौतिक गुण सत्व रज और तम की बातें हैं कि सत्वगुण भी सुख की अपेक्षा से हमें बांध लेता है, रजोगुण दुख पैदा करता है और तमोगुण अज्ञानता। इन तीनों से छुटने के लिए भगवान आह्वान करते हैं। और सारे वेदों के विषय हमारी भौतिक इच्छाओं की तृप्ति के लिए तीन गुणों में आवृत बताए गए। त्रैगुण्य विषया वेदा, लेकिन अर्जुन को कहते हैं नैस्त्रगुण्य भवा अर्जुन। तो इन तीनों गुणों से छूट अर्जुन, कैसे छूटोगे? मेरा कहा मान, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य से सत्यम ते प्रति जानी प्रियो सी में। अरे बाप को अपना बेटा क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि उसका अंश है, इसका अंश है। वो हमें प्रेम पूर्वक बुलाते हैं और हम उनको तिरस्कार पूर्वक हटाते हैं अपने जीवन में। इनकी मान्यता रखते हैं फिर भी इनका कहा सुनते नहीं। अपने मनुष्य जीवन में थोड़ी शुद्धि लाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान के वचन को हम समझने के लिए लायक बन जाएंगे कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं।
यद करोषि यदश्नाशि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। वो मांगते हैं हमारे पास प्रेम की भिक्ख के लिए, हम जो जो कुछ दे सकते हैं वो सब मांगते हैं, लेकिन कंजूस रहे हैं हम। ईर्ष्या लोग कंजूस कहलाते हैं, जो देना नहीं चाहते। हम समझ रहे हैं कि भगवान तो बोलते हैं हम अकलमंद हैं, हम लेकर बैठे हैं सब, हमें देखना पड़ेगा, ये तो मांग लेते हैं, इसलिए हम ज्यादा इनसे चालाक बनने जाते हैं, इसलिए हमारी अवगति होती है, सदगति की भावना करते हैं, अवगति ही होती है। भगवान के पास जाना है तो भगवान के मार्ग को अनुसरना पड़ेगा। वो हर एक मनुष्य के लिए आसान बनाते थे, सिर्फ अपने नाम का वो कीर्तन करने को कहते हैं कि मुझे पुकार, ये नाम ने सारी शक्तियां दे दी है, ये शक्ति के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान के नाम की शक्ति का परिचय तो शास्त्र में दिया है, कलियुग में कलि संतरणीय उपनिषद जो यजुर्वेद के भाग में ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। कोई नई खोज या नया आविष्कार हम लेकर नहीं आए हैं, लेकिन इन भगवान के नामों की जो शक्ति है कलयुग में, इसके अलावा दूसरा कोई बराबरी का उपाय नहीं, ऐसा तीन बार ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं, और नारद जी ने भी ऐसा फैलावा किया और तीन बार ठास ठास कहा। यजुर्वेद में कलि संतरणीय उपनिषद के भाग में ये कहा है ब्रह्मा और नारद जी कि इति षोडशकम् नाम नाम कलि कल्मषनाशनम् परतर उपाय सर्वदेश वेदेशु न दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इन 16 शब्दों का मंत्र जो है उसमें भगवान की शक्ति पूरे पूरी भरी है। भगवान के एक नाम में भी सारी शक्ति है, लेकिन नाम जिस ढंग से लेने को कहा है उसका परिचय भी हमें शास्त्र में दिया है। कौन सा नाम कलयुग में काम करेगा, उसमें क्या भावना है, क्या अर्थ है उसका, वो शास्त्र स्वयं देते हैं। दूसरों को कोई अपने दिमागीकरण से अर्थ बनाने की, अर्थ गठन करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका प्रचार करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आए थे। तो भगवान अपने नाम में ही अपने आप को हवाले करने वाले, तो नाम की शक्ति का परिचय करने के लिए नाम लो। ऐसे नहीं कि जब दो चार कीर्तन में हमने नाम ले लिया, नहीं, वो रेगुलेटेड होना चाहिए। इस कलयुग में हम तपश्चर्या या यज्ञ इत्यादि कर नहीं सकते, तो ऐसा नाम का यज्ञ भगवान ने स्वयं बनाया है। भगवत गीता में कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में जप यज्ञ। आप लोग कितने जप कर रहे हैं, कोई करता है जप नियमित रूप से, भगवान के नाम का जप करते हो? कलयुग में जप यज्ञ में भगवान ने अपने आप को हवाले करने की इच्छा प्रकट की है। सारे यज्ञों में जप यज्ञ में हूं भगवान कहते हैं। तो भगवान का परिचय करना हो तो जप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान के नाम में ही रुचि नहीं है हमें। हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार सुनने के लिए यदि हम इकट्ठे होते हैं तो इसमें हमारी प्रगति कितनी होगी? कुछ तो प्रमाणसर होना चाहिए। जैसे पेट में खुराक प्रमाणसर और नियमित रूप से देते हैं, तो आत्मा का खुराक भगवान का नाम है। आत्मा ये शरीर रूपी पिंजरे में पड़ा है, पंछी उनको न खिलाकर सिर्फ पिंजरे की मावजत करा करें तो हमें क्या लाभ होगा, आत्मा तरसती ही रह जाएगी। इसलिए भगवान का नाम आत्मा का खुराक है, आत्मा की जिंदगी सचमुच उनसे देनी है तो भगवान का नाम बताया गया है। तो स्थिति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम परतर उपाय सर्ववेदेशु न दृश्यते। इससे पर यानी कि सुपीरियर, इतर यानी कि अन्यथा, दूसरा कोई उपाय नहीं, सारे वेद में नहीं दिखाई देगा। तभी ये दिया गया है तो और ढूंढने की क्या आवश्यकता है, समय की बर्बादी करने की क्या आवश्यकता है। जितना समय हमारा बचा है जिंदगी में, जितने श्वास गिने बाकी हैं, उतने में तो हरिनाम कर लेना चाहिए। ये शिक्षा नारद मुनि को दी। नारद मुनि कहते हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नस्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये तीन तीन बार कहने की क्या आवश्यकता है, कि एम्फेसिस है। इट्स ए इरिवोकेबल फैक्ट। जो दृढ़ता पूर्वक इतना आपको यदि कोई आग्रह करता है कि इसके अलावा हमारा दूसरा कोई कल्याणकारी उपाय है ही नहीं, तो उनको अपनाने के लिए हम क्यों झिझकते हैं। भवसागर का धारण करना है, तो मनुष्य जगे, तामस भाव, तामस चीजें खानी नहीं चाहिए, तो ऐसे ही विचार आएंगे और हमें 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 ऊपर उठने नहीं देंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि हम सनातन अवस्था वाली आत्मा को सनातन अवस्था में भगवान के साथ उसका व्यवहार है वो स्थापित करने के लिए सततम कीर्तयन्तो करें। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।